الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کلمات کے معانی ذکر کیے جا رہے تھے. گزشتہ درس میں ہم نے خطبہ شعبانیہ، اس کی سند مختلف کتب میں اور کتاب الاعمالی اور اس میں اعمالی کا تعارف، اسے ملاحظہ کیا. اور آغاز میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کا حکم دیا ہے. استقبال ایک شے کا کرنا اس شے کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. مثلا اگر ایک بہت قیمتی مہمان آپ کے گھر میں آ رہا ہے، تو اس مہمان کے آنے کا انسان اسی طرح سے استقبال کرتا ہے کہ جتنی اس کی عظمت ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو یہ قدر و قیمت دیتا ہے، یا صرف افراد نہیں، ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، ایسے ایام ہوتے ہیں، جیسے شادی کے ایام. اس کا وہ استقبال اپنے شادی کے دن کا وہ بڑی شد و مد کے ساتھ کرتا ہے. مہمانوں کو کارڈ بھیجے گا، جگہ کا انتخاب کرے گا، ان کی مہمان نوازی کے لیے مینیو کو وہ معین کرے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں وہ انجام دیتا ہے. یہ اس دن کی اس کی نظر میں قیمت کو بیان کرتا ہے. یا ایک بڑی شخصیت، مثلا ایک دیندار کے لیے بالخصوص رہبر معظم ایک بہت باعظمت شخصیت ہیں. اگر ہمیں پتہ یہ چل جائے کہ فلاں ہفتے کے دن یا فلاں دن وہ تشریف لا رہے ہیں، تو ہم ان کے استقبال کے لیے کس طرح سے اہتمام کریں گے؟ یہ پہلے بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ داخل ہوئے ہجرت کر کے، تو بہت بڑا ان کا استقبال کیا گیا، اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ کلمات پڑھے کہ جو آئندہ آنے والی امت نے بھی اپنے ذہنوں میں نقش کیے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ چودھویں کا جو چاند ہے وہ الوداع کہنے والی دو پہاڑیوں کے ٹیلے سے رونما ہو گیا، کیونکہ اچانک وہاں سے سامنے آتے تھے. تو وہ ٹیلوں پہ کھڑی تھیں بچیاں، اور انہوں نے پھر استقبال کیا. تو یہ عظمت اس شے کی عظمت پہ استقبال دلالت کرتا ہے. جو فرد ماہ مبارک رمضان سے ایسا برتاؤ کرے کہ کل خبر ملے کہ روزہ ہے، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی نظر میں اس مہینے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ قیمت تھی. اس قدر قیمت تھی کہ استقبال کے لیے بھی خصوصی اہتمام ہے، اور الوداع کا خصوصی اہتمام ہے کہ آپ صحیفہ کاملہ میں ماہ مبارک رمضان کی الوداعی دعا پڑھ لیں. آپ وہ دعا پڑھیں، صفحے کے صفحے گنتے چلے جائیں گے، اتنی لمبی دعا ہے وہ. اس قدر طویل الوداع کیسے امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے کلمات پہ غور کریں کہ وہ کس طرح سے گویا کہ ایک انتہائی قریبی اور انتہائی گہرا ربط رکھنے والی شے بندے کے نفس سے جدا ہو کے جا رہی ہے. اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام وہ اس کے بارے میں غمگین اور حزین تھے. تو یہ استقبال اور الوداع، ہر دو چیزیں اس شے کی جہاں عظمت پہ دلالت کرتی ہے، وہاں پہ ایک اور معنی بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ایک وجود ہے، لیکن اس وجود سے ہم بے خبر ہیں. وہ ہے کیا چیز، یہ ہمیں نہیں پتہ. مثلا کہتے ہیں لیلۃ القدر کو پا لو، اس کا اندر لیلۃ القدر کوئی ایسی شے ہے جسے پایا جا سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان، اس کے لیے کئی قسم کے الفاظ ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک حقیقت رکھتا ہے، اس حقیقت سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کوئی حقیقت نہ رکھتا تو استقبال بھی بے معنی تھا. اگر ماہ مبارک رمضان کی کوئی قیمت یا کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کے الوداع بھی بے معنی تھا. اس سے یہ پتہ لگا کہ اس کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے. اب استقبال دو طرح کے ہوتے ہیں، اور ان استقبال کے طریقوں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک فرد کیسا ربط اس ماہ مبارک رمضان سے جوڑنا چاہتا ہے. بالفاظ دیگر، एक शख्स वो है कि जिसके पास आइमे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मालूमात मौजूद हैं कि जो उन्होंने उम्मत की रहनुमाई की है और तारुफ कराया है, यानी मारिफ रमज़ानुल मुबारक के इनवान से बयान किए हैं, और एक शख्स ने वो हस्ब इस्तेदाद मारिफ लिए हैं और उन मारिफ को लेने के बाद वो इस्तकबाल रमज़ानुल मुबारक करता है, और एक शख्स वो है कि जिसके पास कोई मालूमात नहीं है, बस इस्तकबाल रमज़ानुल मुबारक होना चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि टीवी प्रोग्राम्स लग जाएंगे तो वो आधा सर ढाम के ख़वातीन बैठ के अजीबोगरीब एक सिलसिला शुरू हो जाता है प्रोग्रामों का, या बहुत ज़्यादा हो तो भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, पूरे महीने बेसन नहीं लाए होते तो फिर 10 किलो बेसन लेके आएंगे, कोई 20 किलो फलां चीज़ लेके आएंगे, तो वो कहेंगे कि यार कोई कहत का दौर मुस्तकबिल में आ रहा है, इतना सामान जमा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कुछ उससे मुशाबे महीना है, तो इसलिए सामान पहले ही जमा करने शुरू हो जाते हैं। ये इस्तकबाल, इस इस्तकबाल की रग़बत नहीं दिलाई गई। माह मुबारक रमज़ान का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात चाहती है कि बंदे को प्यास लगे, भूख लगे, वो भूख और प्यास से भागना चाहता है। जैसे आखिर तक ये कहते हैं इतना खा लो इतना खा लो, ये जुमला तो मारूफ है, हमने भी बहुत सुना है अपने घरानों में कि भूख ना लगे, फलां टोटके इस्तेमाल करने का कहते हैं, फलां इस्तेमाल करो टोटका के प्यास ना लगे। जबकि भूख और प्यास ना लगना मकसूद होता तो अल्लाह ताला माह मुबारक रमज़ान के रोज़े वाजिब करार देता। हाँ, ये भी नहीं है कि कुछ ना खाए कुछ ना पिए, ये भी गलत है। जो अहकाम वारिद हुए, यानी एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करे, नॉर्मल ज़िंदगी बसर करते हुए क़वानीने इलाहिया के तहत आम हालात में जो इंसान खाता पीता है उसका अहतमाम करते हुए एक मुश्किल से दो चार हो तो इसी मुश्किल से दो चार करना मकसूद है। अगर इस मुश्किल में गिरफ़्तार करना मकसूद ना होता तो अल्लाह ताला वाजिब ना करता माह मुबारक रमज़ान के रोज़े। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि खुतबा शाबानिया से पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो माह मुबारक रमज़ान का ऐसा इस्तकबाल है कि जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ना कि वो इस्तकबाल के पकौड़ों के ढेर लगाने के लिए बेसन जमा कर दें, अफ्तारी में खूब गोश्त उड़ाने के लिए अपने फ्रीज़र और फ्रिज भर दें, या दीगर चीज़ें हम इस तरह की ले लें कि अब इतने घंटे सोना है तो टाइम सारे काट के 5 बजे से की बजाय 12 बजे टाइम आ जाए। ख्याल किस चीज़ का करना चाहिए? हाँ, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए तमाम रोज़े की बरकरार रहे, ये इस्तकबाल में शामिल है। ऐसा बरनामा या ऐसा टाइम टेबल भी नहीं बनाना चाहिए हुकूमतों में या रियासत में कि एक इंसान की तवान से बाहर हो जाए। इस वक्त बहुत एक काबिल अफसोस चीज़ है कि जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी हम देखते हैं कि तमाम तबकात ऐसे नहीं हैं कि जिनके लिए माह मुबारक रमज़ान में एक बड़ी फुर्सत पैदा हो जाए कि वो रोज़े भी रख सकें, काम भी कर सकें। मतलब मज़दूर पेशा तबका है, अब उसने शदीद गर्मी में काम करना है तो वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करें? ये एक रियासत का फरीज़ा बनता है, या इस तरीके से वहाँ पे जो लोग रहते हैं और ख़िदमत खल्क अंजाम देते हैं उनका ये वजीफ़ा बनता है कि ऐसा निज़ाम वजूद दें कि एक मज़दूर तबका भी वो रोज़े की अहलियत को अपने अंदर पैदा कर सके। इसलिए इस तरह के हमें ज़्यादा से ज़्यादा माहौल को वजूद देना चाहिए। अब ये इंसानी अक्ल व शऊर और इंसानी मनसूबा बंदी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसी अहलियत पैदा करें, ये इस्तकबाल का तकाज़ा है। क्योंकि अब जो माह मुबारक आ रहा है वो माह मुबारक रमज़ान वो रोज़ी कमाने, पैसा जमा करने या इन चीज़ों का महीना नहीं है, ये महीना किसी और शय का महीना है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने खसूसी तौर पे दिया है। ये खसूसी तौर पे महीना किस चीज़ का है? इसमें क़ुरान नाजिल हुआ, लिकुल शैइन रबीउन, हर शय की एक बहार है, और क़ुरान की बहार क्या है? माह मुबारक रमज़ान की, इंशाल्लाह ये रवायात आपके सामने आएंगी। और माह मुबारक रमज़ान की बहार अगर क़ुरान करीम है तो क़ुरान करीम वो लोगों के दिलों की रबीउल क़ुलूब है। इंसान की बहार जो है वो फल फूल बूटे नहीं हैं फ़कत, इंसानों की बहार क़ुरान करीम है, और एक बहार को एक सेहतमंद इंसान ही दर्क कर सकता है। बीमार और मरीज़ इंसान वो सही दर्क नहीं कर सकता। इसलिए माह मुबारक रमज़ान अल्लाह ने ऐसा करार दिया है कि दिलों को पहले इलाज की तरफ लाओ और अपने अमराज का इलाज करो, इलाज करके जब सेहतमंद हो जाएं तो रबीउल कुलूब को हासिल करो, वो कुरान करीम है। अब कुरान करीम में रबीउल कुलूब ये नहीं है कि 100 दफ़ा ख़त्म कर लिए, इंशाल्लाह हम ये रवायात पढ़ेंगे। एक शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास और कहना चाहे मैं हर रोज़ 10 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लूँ। उन्होंने कहा, यानी मफहूम ये रवायत बयान कर रहा हूँ कि मना फरमाया, इतनी तेज़ पढ़ोगे तो समझेगा क्या इंसान। कहा कि अच्छा मैं 9 दफ़ा, करते करते एक मर्तबा, तो वहाँ पे जो हमें ताकीद नज़र आती है वो कुरान करीम में गौर व फ़िक्र है, उससे ताल्लुक़ है, या आदाब तिलावत को मद्देनज़र रखते हुए तिलावत करना है, ना कि उल्टे सीधे तरीके से कुरान पढ़ते रहें और समझें कि अब हमने इतने ख़त्म कुरान के कर लिए। लिहाजा ये तफक्कुरात हमारे माशरती तफक्कुरात हैं जो माशरों में फैले हुए हैं कि बग़ैर समझ के उल्टे सीधे तरीके से, बग़ैर तजवीद के, सही अदायगी के, बग़ैर कुरान की आयतों की आयतें इंसान पढ़ता रहे और फिर समझे मुझे बड़ा सवाब मिल गया, या इसी तरीके से इंसान बस तलावतें करे और गौर व फिक्र ना करे, जम करना चाहिए, कि इंशाल्लाह इसके बयान को हम आगे मुलाहिज़ा करेंगे। आइए अब हम इस्तकबाल के हवाले से देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इस्तकबाल का हुक्म दिया। ये तो पता लग गया कि पकोड़ों और गोश्त वाला इस्तकबाल नहीं होना चाहिए, कोई कहत का महीना नहीं आ रहा, ये आ रहा है ज़ियाफ़तुल्लाह का महीना, कि जो ज़ात जितनी करीम होती है उतनी अच्छी मेहमान नवाजी करती है। जो ज़ात जितनी करीम ज़ात है, यानी करीम से मुराद है जिसके पास जितनी कुदरत और जितना दिल नरम और जितना ज़र्फ़ बुलंद होता है, बास का ज़र्फ़ ही छोटा होता है, अल्लाह की तो हर सिफत इला महदूद है। इसलिए वो ज़ात अब मेहमान नवाजी कर रही है कि जो ज़ात हर शय में ला महदूद है। ज़ियाफ़तुल्लाह का महीना है, ना कि क़हत का महीना है। क़हत का महीना तो नहीं आ रहा कि सारी चीज़ें जमा करें, लिहाजा ऐसा इस्तकबाल गोश्त और पकौड़ों और दही बल्लों और इस तरह की चीज़ों का इस्तकबाल का महीना नहीं आ रहा। इस्तकबाल किस चीज़ का करना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ये कहा कि इस्तकबाल करो। अब किस दिन, ये है कि शाबान के आखिरी अय्याम में खुतबा बयान फरमाया रसूलुल्लाह ने, मुअय्यन दिन नहीं वारिद हुआ कि किस दिन ये बयान हुआ, लेकिन यह कि इतना वक्त मौजूद था कि उन शरायत के मुताबिक इस्तकबाल किया जा सके जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। खुतबे को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा था माह मुबारक रमज़ान का तआरुफ़, कि ये पता लगे कि क्या है, यानी ये एक तरफ तफक्कुर ही आता है, यार अब तो रोज़े रखने पड़ेंगे। दूसरा तफक्कुर, यानी एक दो तरह की ज़हनियत हमारे सामने आ जाती है। एक ज़हनियत उसके तहत ये दिखाई देता है बड़ा सख्त महीना है, कहत का गोया के महीना है, रोज़े भी रखने पड़ेंगे और मुश्किलात में फंस गए हैं हम, पता नहीं किस तरह से ये वक्त गुजरेगा, गर्मी भी इतनी शदीद है। दूसरी तरफ अलग तसव्वुर है, ज़ियाफ़तुल्लाह का महीना है, इबादत का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, यानी इसका तआरुफ़ चाहिए कि कौन सी चीज़ सामने आ रही है तुम्हारे, फिर उसी के मुताबिक अपने नफूस और अपने क़ुलूब को आमादा करे। अमादा अगर हम इसे कहत का महीना करार दें, आप देखेंगे वो बेसन और गोश्त ही तो जमा होगा उधर, और अगर हम इसे कहत का महीना ना करार दें बल्कि इसको हम बिलफर्ज इबादत या मग़फ़रत का महीना करार दे दें, इंसानी नफूस अपने लिए वैसे ही गुंजाइश पैदा करेंगे, वो अपने आप को इतनी फरागत में रखना चाहेंगे कि रातों को जाग सकें, दिन को इबादत कर सकें, फुर्सत उन्हें मुहैया हो सके। लिहाजा ये तआरुफ़ के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तआरुफ़ कराया शाबान रमज़ानुल मुबारक के महीने का पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में उन आमाल का तायुन फरमाया कि जो उम्मत को अंजाम देने चाहिए। तीसरे मरहले में इन आमाल का जन्नत और जहन्नम से ताल्लुक़ बयान फरमाया, और चौथे मरहले में सबसे अफजल आमाल के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है, और फिर शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और गिरिया फरमाया। और यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि मसाइब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया फरमाना या गिरिया करना, ये सीरत व सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आइए अब हम इब्तदाई कलिमात पढ़ते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नहु कद अकबला इलैकुम शहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना बढ़ रहा है, बढ़ते हुए तुमसे गले लगाने के लिए, मुआनका करने के लिए, तुमसे ताल्लुक़ कायम करने के लिए कौन आ रहा है? अल्लाह का महीना है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का महीना आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? बिलबरकते, बरकत उसके साथ है, यानी डॉलरों की बजाय बरकत लेके आ रहा है। बिर्रहमते, रहमत लेके आ रहा है। वलमग़फ़िरते, और मग़फ़रत के हमरा आ रहा है। यानी तीन चीज़ों का तस्करा किया। पहली चीज़ क्या है? बरकत। दूसरी चीज़, बरकत असल में बराकत है, रे के ऊपर फतह है, उर्दू में जज़्म के साथ पढ़ देते हैं, तो उर्दू पढ़ने में ऐब नहीं है, उर्दू को उर्दू के तरीके से ही पढ़ना चाहिए। उर्दू में कहते हैं बरकत, लेकिन अरबी में है बराकत। दूसरी चीज़ क्या है? रहमत। और तीसरी चीज़ मग़फ़रत। इंसान की सआदत के लिए यही तीन चीज़ें मुहिम हैं। इंसान की सआदत दुनियावी के लिए भी और सआदत उखरवी के लिए भी अहम तरीन यही तीन चीज़ें हैं, और यही तीन चीज़ें हमें हासिल होंगी, और इनमें सबसे अजीम तर जो चीज़ है, सबसे अजीम तर वो रहमत इलाही है, सबसे अजीम तर है। लिहाजा बरकत है, रहमत है और मगफ़रत है। यहाँ तक कि दो चीज़ें हासिल हो जाए, बरकत और मगफ़रत, इंसान रहमत इलाही को हमेशा उसका मोहताज समझता है, नियाजमंद है, कभी भी उससे मुस्तगनी नहीं हो सकता, उसे हर मरहले में रहमत चाहिए। वो जो कर रहा है वो भी रहमत की वजह से है, जो पाना चाहता है वो भी रहमत की वजह से मिलेगी, और बाकी रहने के लिए भी रहमत इलाही का मोहताज है। लिहाजा रहमत इलाही के बग़ैर उसके लिए कोई किसी किस्म का चारा मौजूद नहीं है। बरकत से क्या मुराद है? बरका कहते हैं, इसके मुख्तलिफ मानी वारिद हुए हैं, इसके मौजूद मकाईस से लुगा या बाज़ जगहों पे मानी इस तरह से वारिद हुए हैं कि डिक्शनरीज जो असली माना को बयान करती हैं, सब सबात सबात के ऊपर ये दलालत करता है, यानी एक चीज़ मुहकम तौर पे जड़ पकड़ लें और फिर उस शय से छोड़े ना उसे, यानी जिसे कहते हैं ना कदम जमा लेना, इसको कहते हैं बरकत। बाज़ ने इजाफा किया इसमें, कदम जमा लेने के बाद नशोनुमा होना, कदम जमा लेने के बाद या एक शय का खूब मुस्तहकम हो जाने के बाद नशोनुमा पाना, किसे क्या कहते हैं? बरकत। मतलब इंसान के पास एक माल आ गया, अब माल हाथ में आ गया, हाथ में आने के बाद उसमें बरकत क्या कहलाएगी? इस माल से इंसान के पास उस वसत से ज़्यादा चीज़ें आ जाए जिससे अमूमन ये ख़रीदी जा सकती हैं, या वो जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो इंसान को खूब नफ़ा पहुँचा कि इस दुनिया से रुख्सत हो, ये चीज़ें बरकत कहलाएंगी। बरकत यानी एक चीज़ का मुस्तहकम होने के बाद नशोनुमा पाना क्या कहलाता है? बरकत। बरकत का एक माना जौहर भी है, पानी का जो जौहर होता है उसे भी बराकातुन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पानी ठहर जाता है और ठहरने के बाद कायम दायम रहता है, इसलिए उसको बरका से ताबीर करते हैं। एक शेय कायम हो जाए, मुस्तहकम हो जाए और कायम दायम रहे, उसे बरका से ताबीर किया जाता है। इंसान मादी लिहाज से भी बरकत इलाही का मोहताज है और मानवी लिहाज से भी बरकत का मोहताज है। माह मुबारक रमज़ान में क्या मिलेगा? वो मिलेगा जो ये मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करके आज एक जहान इख्तियार करना चाहता है। अल्लाह ताला ने बरकात की जगह मुकर्रर की हैं, बरकात के लिए अय्याम और माह मुकर्रर किए हैं। मसलन बरकात के मकाम क्या हैं? मस्जिद एक मकाम बरकत है, इसी तरह मोमिनीन की महफिल जिसमें अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम का तस्करा हो, बरकत का मकाम है। इसी तरीके से हरम अहले बैत अलैहिस्सलाम मकाम बरकत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही सुन्नत अहले सुन्नत शिया कुतुब में वारिद हुए हैं वाक़यात के वुज़ू का पानी वो बरकत के तौर पे इस्तेमाल कर लिया करते थे सहाबा किराम। इसलिए बाज़ चीज़ों में अल्लाह ने बरकत करार दी है। हरम अहले बैत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की बरकत से शिफा के वाक़यात कसरत से और तवातुर के साथ वारिद हुए हैं। बहरहाल, इसी तरीके से ये माह माह बरकत अल्लाह ने करार दिया है। इसमें बरकत इंसान को मिलती है मादी लिहाज से भी और मानवी लिहाज से भी। दूसरा इसमें रहमत करार दिया गया है, और रहमत जो है एक नरम गोशे को कहते हैं, किसी ज़ात में नरम गोशे और नरम गोशे की बुनियाद पे सादिर होने वाला एक अमल जो अगले इंसान या मद मुकाबिल के नफ़ा के लिए हो। क्यों रहमत का इंशाल्लाह ताला तारुफ जुदा तौर पे कराया जाएगा। मग़फ़िरत, अफ़ुन व मग़फ़िरत उनमें फ़र्क है। अफ़ुन कहते हैं मुआफ़ी को, मग़फ़िरत उन कहते हैं मुआफ़ी के साथ साथ नामे अमाल से भी वो अमाल मिटा दिए जाएँ, यानी एक कैदी है उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी जाए और जो पर्चा हुआ था उस पर्चों को भी और उसकी फ़ाइल को भी जला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अब ना कोई सबूत है कि ये कैदी था और ना कोई सज़ा है कि ये कैदी है, कोई उसके ऊपर कैदी होने का एक भी हमारे पास दलील या शाहिद मौजूद नहीं है। इसे कहते हैं मग़फ़िरत। मग़फ़िरत यानी महव शय, शय को मिटा देना, यानी नामे आमाल से तमाम गुनाह अल्लाह मिटा देता है, माफ़ तो करता ही करता है। अब उसके नामे आमाल फरिश्तों के सामने भी क्या है, बिल्कुल साफ़ सुथरे नामे आमाल हैं, फरिश्तों के लिए भी अब यही है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया और क़यामत वाले दिन भी उसका कोई नामे आमाल में स्याही नहीं होगी अगर मग़फ़रत हो जाए। आगे देखें, शहरुन हुआ इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर, अल्लाह के नज़दीक ये महीना अफ़ज़ल तरीन महीना है। वा अय्यामुहू अफ़ज़लुल अय्याम, अल्लाह के नज़दीक ये अफ़ज़ल तरीन अय्याम हैं। वा लियाली है अफ़ज़लुल लियाली, अल्लाह के नज़दीक इसकी रातें अफ़ज़ल तरीन रातें हैं, क्योंकि इंसान का एक दिन इन्हीं चीज़ों में, दिन रात इन्हीं में तकसीम होते हैं। वा सआतुहू अफ़ज़लु सआत, वा शहरुन दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि इंशाअल्लाह ताला अगले हम दर्स में ये मुलाहिज़ा करेंगे, इंसान के जो अवकात ज़माने के अतबार से तकसीम होते हैं उसके बारे में जो इशारा मौजूद है वो क्या है और इन अवकात में क्या क्या पाया जा सकता है। रात में अल्लाह ने क्या रखा है मानवी तौर पे, दिन में क्या रखा है, सुबह के वक्त क्या रखा है। नंबर दो ये देखेंगे कि ज़ियाफ़तुल्लाह से क्या मुराद है, दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि इंशाल्लाह इसको अगले दर्स में मुलाहिज़ा करेंगे। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।